وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تم کو اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بڑھتی ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، کہیں امید ہے کہیں خوف ہے۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بادلوں کی کرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے اس حالت میں گرا دیتا ہے جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ گرج کے وقت اگر 3 بار اس آیت کو پڑھیں تو ایسا بندہ بجلی کی گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آج امت مسلمہ پر بھی یہی بجلیاں گرجتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جن کو وہ چھوڑ کر اس کو پکارتے ہیں اور وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، یعنی ایسا تیر جو کبھی نشانے پہ نہیں لگتا۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہراتے ہو، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا اور اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اسی طرح امت مسلمہ اور امت غیر مسلمہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں وہ خیر آ جائے جو بارش زمین کو دیتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب یہ ہے وہ آیت، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے، اس کی آڈیوز بہت خوبصورت آیت ہے، اور سبیل الجنہ میں ہم اس کو کافی ڈیٹیل سے کرتے ہیں۔ آج صرف ہنٹس لے کر ہم آگے چلیں گے، لیکن آپ اس کی تفسیر بعد میں سن سکتے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے نکلا۔ امیجن کیجیے اس وقت آسمان سے کون سی بارش ہو رہی ہے؟ بولیے، وہی کی بارش ہو رہی ہے نا۔ آپ سب یہاں کے ندیاں نالے، ہر ایک کا ایک اپنا برتن ہے۔ ہمارے دل جتنا اس کو ہولڈ کر رہے ہیں نا، کچھ تھک گئے ہوں گے وہ ابزارب نہیں کر پا رہے ہوں گے، کچھ بہت گہرے میں، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ اور ہوں گے۔ مجبوریوں کے ساتھ اللہ نے ہر ایک کی رعایت کی ہے، لیکن کچھ کیئر لیس بھی ہوں گے۔ ان کو صرف پارا پورا کرنا ہے، ان کو صرف پڑھنا ہے۔ ہر بندہ یہاں سے اپنے ظرف کے مطابق علم کا پانی لے کر جائے گا۔ اسی لیے نتائج فرق ہوتے ہیں نا، ہر اسٹوڈنٹ فرسٹ نہیں آتا اور سارے فیل بھی نہیں ہوتے۔ استاد تو ایک ہی ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں اور کچھ فرسٹ کیوں آتے ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ اس کا کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ نہیں، لینے والا لیتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کتنا لے رہی ہوں، میں اس وقت کس لیول کا قرآن پڑھنے نکلی ہوں۔ فرمایا جب قرآن اندر آتا ہے تو ہوتا کہ اس کیفیت کو نوٹ کیجئے گا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ نیا نیا ایمان جوش والا ایمان ہوتا ہے۔ اس وقت قرآن سنتے وقت اگر آپ کے دل میں جوش ہے تو آپ ایک دھات کی پگھلی ہوئی جھاگ کی طرح، پھر دل کرتا ہے کچھ کرو، کچھ کرو۔ ریورڈز کو دیکھیے، نیو مسلمز کو دیکھیے، یوتھ کو دیکھیے، جب وہ قرآن سے جڑتے ہیں، اسلام سمجھ آتا ہے، سیرت ملتی ہے، وہ رکتے ہی نہیں۔ ان کو اس طرح آتا ہے کہ اب ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اور اس طرح سے فرمائے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاک ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ وام مما ینفع الناس فیم کسف الارض، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہی بچتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ جب تک ہم مسلمانوں نے لوگوں کو نفع دیا، ہم زمین پہ بچے۔ آج ہم نفع دینے کی بجائے لینے والے بن گئے، بیکار ہو گئے۔ اللہ نے لوگوں کا روح ہم سے موڑ دیا۔ لوگ کس سٹور سے چیزیں لینے جاتے ہیں جہاں ہر چیز بھی ہو اور قیمت بھی کم ہو؟ ایسے ہی ہے نا، جو کھلے بھی اور وقت بھی بند ہو۔ پتا چلے گئے، کھلا ہی نہیں، گئے پتا چلا بند ہو گیا، نہیں گئے پتا چلا اس دن سیل لگ گئی۔ لوگ ایسے سٹور کو پسند کریں گے؟ اپنے اوپر لے کے سوچیے۔ आज हम मुसलमान अगर इतने ज्यादा लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल होते कि जो मिलना है इनसे ही मिलेगा। मैंने एक ड्रीम दिखाया था चाहे कुछ अरसा पहले एक जगह, मुझे याद नहीं है कहाँ था, अगर वरना रेफरेंस होता तो याद करा देती। चले आपके साथ भी वही एक्टिविटी करते हैं और आप भी जरा अपने अंदर सोचें। आप इमेजिन करिए कि 2015 है आज, हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं क्योंकि अभी तो मुमकिन नहीं है, सॉरी, ख्वाब भी तो वो देखे ना कि जो हो सके। लेट सी 2020, एक शख्स है उसको जहाज खरीदना है, कहाँ से मिलता है? ओके, सऊदी अरब में बहुत अच्छे जहाज बनते हैं, वहाँ मुस्लिम है, सारी दुनिया के मुस्लिम है। ओके, जहाज लेने के लिए सऊदी का वीजा लेते हैं। एक शख्स है उसको बेहतरीन फसल चाहिए, कहाँ से मिलती है? सऊदी अरब। कपड़ा कहाँ से मिलता है? सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब एक सिंबल है इस वक्त मुस्लिम रियासत का। जो चीज लोग चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी, उनको साइंस, उनको कुछ चाहिए, जो उनका एप्पल फोन और नेक्स्ट हो सकता है एप्पल का ब्रांड ही वहां से निकला है और कोई नई चीज वहां से निकला है, इलेक्ट्रॉनिक्स उधर से, एटॉमिक एनर्जी उधर से, लोग एक ही तरफ का रुख करें, मुझे सच बताइए क्या मुसलमान उनकी मजबूरी नहीं बन जाएंगे? क्या उनकी सारी हमदर्दियां और सारी उनकी वो जाना चाहे कि ख्वाहिशात उस जगह पहुंचने की नहीं हो जाएंगी? तो कर लें, क्या बड़ी बात है? क्या ये हम ख्वाब नहीं देख सकते? हाँ, लोग कहते हैं कपड़े पाकिस्तान के बहुत अच्छे, जूते पाकिस्तान के अच्छे, जेवर इंडिया के, अच्छा मसाले उनके अच्छे, जो भी अल्लाह ने दे दिए तो हमने बना लिए वरना हमारा उसमें भी कोई काम नहीं था। लेकिन जो लोगों को नफा देगा वो बचेगा। आप देखिए चाइना और आप, हम सब एक साथ आजाद हुए, हम 1947 में हुए, वो 48 में हुए, एक साल बाद। ये मुझे बचपन का पढ़ा हुआ सबक याद है, मैंने अब कभी नहीं खोला, हमारी किताब में लिखा हुआ था ये बात कि दोनों एक साल के फर्क से चेंज हुए। आज उन्होंने क्या किया? किसी रिवर्ट की बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब वो मुसलमान हुआ और उसने इस्लाम की ये खूबसूरती देखी और इसके रूल्स एंड लॉज, कहने लगा कि लोगों ने मेड इन चाइना की मोहर घर घर बचा दी। ओ मुसलमानों, तुम्हारे पास इतना ब्रांडेड दीन है, तुम इसको अभी तक दुनिया में नहीं पहुंचा सके। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। क्या आपके पास इतनी अच्छी चीज पड़ी हो और दूसरे लोग उससे महरूम हो, तो क्या लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे? फिर वो आपसे छीनेंगे नहीं? फिर आप इल्जाम नहीं लगाएंगे? इस वक्त इस खूबसूरत दीन को दूसरों से शेयर करना सबसे बड़ा नफा देना है लोगों को। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। इसीलिए एक अल्लाह ताला ने इस चीज को हमारे सामने रखा कि जुआक बनो। और आप देखिए कि किसी भी जगह चेंज कब आती है, जब वहां के यूथ को समझ आती है। वो आप लेक्चर सुनेंगे इंशाल्लाह, उसमें बहुत डिटेल से ये मिसाल दी हुई है, लेकिन खुलासा बताती हूँ कि गाड़ी के मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं। स्टेयरिंग होता है जो गाड़ी चलाते हैं, जो शुरू में होता है, इसी तरह सीट्स होती हैं, पहिए होते हैं। गाड़ी के चलने का और उसके भागने का सबसे बड़ा जो इन्हिसार है ना, वो इंजन और स्टेयरिंग और उस पर होता है। गाड़ी में बैठकर आप कंफर्टेबल कितने बनते हैं, वो सीट्स होती हैं। जब किसी भी कौम की गाड़ी की स्टेयरिंग और उसका इंजन यूथ के हाथ में होता है ना, तो गाड़ी तेज चलती है। बड़े बूढ़े जो इस तरह के लोग हो जाते हैं कि जिनको अल्लाह ताला जरा उम्र भी दे देता है, समय उनमें बर्दाश्त आती है, यूथ में बर्दाश्त नहीं होती। जोश, हाइपर, वो कहते हैं या हेयर या देयर, या खत्म या ओके, दैट इज जस्ट नो करो, दैट्स इट। तो यूथ को कंट्रोल करने के लिए जो इस वक्त खूबसूरत तरीका में उम्मत मुस्लिमा में लेना है कि ब्रेन यूज करें यूथ का, उनको बनाएं अपने लीडर, और आप बूढ़े पीछे से उनको धमकियां देते रहे नरम सीटों की तरह, बेटा ओके, इट्स फाइन, टेक इट इजी। जिस सोसाइटी में इस तरह होगा वो फ्लरिश करेगा। और ऑपोजिट कर लीजिए, बूढ़ा बाप बैठ जाए स्टेयरिंग पे और हर थोड़ी देर बाद झटके मारे और स्पीड इतनी हो कि उसके साथ पैदल चलने वाला तेज पहुंच जाए और वो अब्बा जी की गाड़ी पीछे पड़ी है, और बेटों को अपने पीछे रखे, बैठ जाओ पीछे, अभी तुम बच्चे हो, वो सीट जो नरम होनी थी वो पीछे उछलते कूदते जा रहे हैं, वो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। इस वक्त अपनी यूथ को आगे लाना है, कैसे? उनके हाथ में कुरान और सुन्नत का स्टेरिंग देकर, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेगा और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और आज अपने लिए यहां नियत करें, मैंने लोगों के नफे का बनना है। अब इतनी उम्र नहीं रही हमारे पास कि कुछ पीछे से जाके शुरू करें, जहां खड़े हैं ना वहां से लिखें। क्या स्किल है? लिख सकती हूँ, लिखूं, बोल सकती हूँ, बोलूं, पर क्या बोलूं, क्या लिखूं, आता ही नहीं है। हमारी एक ऐसी लिसनर है माशाल्लाह कि वो 2-3 साल से दौरे कुरान के थ्रू ही जुड़ी है, सारी जिंदगी उन्होंने लिखा, कभी पाकिस्तान की मोहब्बत में लिखा, कभी किसी और नाम से लिखा, लेकिन जब कुरान पढ़ा तो फिर जो वो कमेंट्स देती हैं और रोती हैं, वो कहती हैं आप पता चला मैंने जिंदगी जाया की। अब उनकी कोशिश होती है कि वो कुरान के लिए लिखे, इस्लाम लिखे, क्योंकि असल तो ये लिखना था ना। तो बाज दफा स्किल्स होती हैं लेकिन गलत हाथों में होती हैं। कुरान हमें टेम करता है, बगैर लोगों से कुछ लेने की उम्मीद के चले, किसको दिखाना है? अल्लाह को दिखाना है। हम कहते हैं कोई कहे अच्छा क्या करूं। देखिए अगर खुद से आइडियाज नहीं आ रहे ना, तो सेल्फ मोटिवेशन ना होना, तकवा ना होना, आपके अंदर ईमान आता है ना, आपको खुद आइडियाज आएंगे, आज ही आ जाएगा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं। और मेरे वाले 90% लोगों को लगेगा पहले लेट स्टार्ट फ्रॉम माई कुरान टीचिंग, चलो मैं कुरान सीखूं, कुरान लर्न करूं, फिर उसी से जोश आएगा, उससे शुरू कर लें, आप देखेंगे कि बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कुछ सालों में वो कहीं दीन के लिए लिख रहे होंगे, कोई बोल रहे होंगे, कोई सुना रहे होंगे, और कुछ नहीं, राइट दे रहे होंगे लोगों को, किसी के बच्चे पाल रहे होंगे, किसी कैंटीन में खड़े खाना पका रहे हैं, कोई सफाइयां कर रहे हैं। माशाल्लाह टीम ऐसी बनती है, जहां भी काम शुरू हुआ इसी तरह की टीमें बनी। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे पहले साल के कोर्स में थे एक मुल्क में, तो मैं सोचती थी कि इनकी उम्र क्या है। एक ऐसी सिस्टर थी जो रिसेंटली कैंसर से उठी थी, ब्रेस्ट कैंसर था उनको, जब मुझे मिली तो मुझे उनकी बेटी ने भी बताया कि इनका ये इशू था, और वो उसके बाद नई नहीं थी। तो मैं सच बताऊं आपको कि मैं जब भी उनको क्लास में देखती थी तो मैं सोचती थी, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उनको ले आया, दूसरा ये बीमारी का नाम इतना बुरा है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं हमसे पहले ये बंदा ना चले। तो मैं दिल में सोचती थी ये जो सीख रही है इनसे क्या फायदा लेंगी, पता नहीं इनके पास कितना वक्त है। माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए वो दिन और आज का दिन, ना तो उनको वो तकलीफ हुई ना बीमारी हुई, डॉक्टर हैरान है उनकी, अब वो सारी खत्म, और वो दिन और आज का दिन वो स्कूल के अंदर इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं कर सकेंगी ना। सबसे ज्यादा खाने उन्होंने स्कूल को पका के खिलाए अभी तक मेरे गुमान के मुताबिक, और बच्चों की मुस्तकिल बेबी सिटर है वो हमारे पास, वो बैठी रहती है साथ, काम उनका वो काम ही वो देते हैं, और माशाल्लाह उनका जो हिस्सा दीन में, जो माली तौर से उनका हिस्सा, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना बड़ा दिल। सोचने की बात है मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे झाड़ू लगाना आता है, मैं किसी जगह में झाड़ू लगाऊं ताकि लोग के वाह क्या खूबसूरत स्कूल है, इधर से तो खुशबू आ रही है, अल्लाह बस मेरा यही काम लिखते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि अब मैं कोई पीछे से जाके पढ़ लिख के कोई स्टेज पे बैठूं, कुर्सी पे बैठूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, तो मुझे कहीं लगा ले, कोई एकेडमिक में चला जाता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, हर बंदा अपने आप को कहीं खपा ले। इंतजार ना करें कि कोई आपको कहे तो आप करें, खुद वॉलंटियर फॉर्म फिल करें, खुद बढ़े आगे, मैं क्या करूं कैसे करूं, फिर आप देखिएगा कि फयाम को सुफेल अर्दी, आप दुनिया से चले भी गए आपका नाम रहेगा। आज इमाम बुखारी दुनिया में नहीं है लेकिन एक जिंदा पर्सनैलिटी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को नफा दिया, उनकी मां की कुर्बानी ने, उस बच्चे को अल्लाह के नाम पे डिवोट करने ने आज पूरी दुनिया को इल्म का खैर का खजाना दे दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी नस्लों में भी ऐसी खैर ले आए, और अगर हम नहीं मानेंगे या मान लेंगे, दोनों का मामला आयत नंबर 18 में, लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली, खुद से पूछिए मैंने कबूल की तो इनके लिए भलाई है, खुशखबरी साथ ही अल्लाह कहता है रिटर्न में ये दूंगा, और जिन्होंने कबूल ना किया, और अगर वो सारी जमीन की दौलत के भी मालिक हों, यानी और दुनिया ही बनाते रहें और इतनी ही और भी फराहम कर लें, तो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इन सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनसे पूरी तरह हिसाब लिया जाएगा। कितना और कमाएंगे, कितनी को दौलत जाएगी बैंक में, कितना खाएंगे, क्या हम दो की जगह चार रोटियां खाएंगे, जितनी दौलत बढ़ती है खाना तो उतना ही कम हो जाता है। असल बात यह है कि आज जब हमारा माल कमाने का वक्त नहीं रहा, नेकियां कमाने का वक्त है। देखें एक है कुछ बैंक में है, कुछ प्रॉपर्टी है, कोई अभी नबी होगी, अगर एक महीने जॉब चली गई मियां की कुछ गुजारा हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे अब एक साल के बाद जो होगा, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तो आप देखिए करोड़ों भी रखा होता है एक रात में दब जाता है। क्या हुआ था यहूद के साथ जब जवाल शुरू हुआ, स्विस बैंकों में उनका सोना रखे का रखा रह गया, और उनको आग की भट्टियों में जला दिया था दुश्मन ने, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस आयत पे अमल नहीं किया था। अल्लाह ताला हमें दूसरों के हाल से इबरत लेने वाला बना दे।